नॉर्दर्न टेरिटरी में डायबिटीज के इलाज के नए तरीकों पर शोध कर रहे डॉक्टर्स का कहना है कि फेडरल सरकार को इस क्षेत्र में और ज्यादा निवेश करना चाहिए। यह बात फेडरल सरकार की उस घोषणा के बाद आई जिसमें इंडिजीनियस समुदाय में टाइप 2 डायबिटीज से पीड़ित लोगों के लिए सस्ते इंजेक्शन फार्मास्यूटिकल बेनिफिट स्कीम के जरिए मुहैया करवाने का प्रस्ताव है। इस स्कीम के तहत एक्सेंडिडेट, जिसे ब्रांड नेम बायोडुरान के नाम से जाना जाता है, अगले महीने से लोगों को मिल सकेगी। फेडरल सरकार का कहना है ऐसा होने से वे मरीज जो खान पान या रहन सहन में बदलाव लाने में असमर्थ हैं तथा टाइप 2 डायबिटीज की वजह से इंजेक्शन पर निर्भर हैं, अब ये सस्ते में और काफी सुविधा में ले सकेंगे। सरकार का मानना है कि इस परियोजना से लगभग 20,000 लोगों को फायदा होगा और वो $1,600 प्रतिवर्ष बचा सकेंगे। स्वास्थ्य मंत्री सुजन ले ने बताया कि पिछले 12 महीनों में करीब 9,00,000 लोग टाइप 2 डायबिटीज से प्रभावित हो विभिन्न अस्पतालों में इलाज करवा रहे हैं। उन्होंने 9 नेटवर्क को बताया कि एक्सेंडेट के प्रयोग से डायबिटीज से संबंधित परेशानियों से निजात मिलेगी।
If you need to give yourself injections for type 2 diabetes, and not everyone with this condition does, we are listing a medicine that allows you to do that just once a week, not twice a day, and in so doing, keep type 2 diabetes under control, meaning a lot fewer long-term consequences. We have one of the highest rates of amputations for type 2 diabetes in the world, and I really want to address that, turn that around, and help people manage the condition so that they don't end up with complications later in life.
Greg Johnson, जो डायबिटीज ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख कार्य अधिकारी हैं, एक्सटेंडाइट के PBS में शामिल करने को एक बड़ा सुधार मानते हैं।
This is a serious condition. It's underestimated by the public. They think it's easy, just they hear lifestyle and think it's just easy. It's not. This is a tough disease. And it's expensive. It costs people a lot of money to try to manage their diabetes. So making new medicines like this and innovative ways to give medicines affordable for Australians is incredibly important so they can actually use the medicines properly, and then you'll get good diabetes management. Then you'll prevent things like blindness, amputations, heart attacks and strokes, and lots of hospitalizations. So the flow-on benefits of having good treatments that people can actually use are wonderful.
स्वास्थ्य मंत्री के अनुसार, इंडिजीनियस समुदाय के लोग अन्य ऑस्ट्रेलिया वासियों की तुलना में डायबिटीज से संबंधित बीमारी के कारण 5 गुना ज्यादा मात्रा में मृत्यु के खतरे से जूझ रहे हैं। सुजन ले मानती हैं कि इस परियोजना और अनुदान से सबसे ज्यादा फायदा इंडिजीनियस समुदाय को होगा। मेलबर्न स्थित बाकर आईडीआई इंस्टीट्यूट के एसोसिएट प्रोफेसर नेल कोहेन नॉर्दर्न टेरिटरी में डायबिटीज के मरीजों पर एक्सेंडिएट के प्रयोग पर शोध कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि एक्सेंडिएट और टी ट्री शहरों के लगभग 50% लोग अपनी पुरानी दवाई के साथ इस नई दवाई के प्रयोग में भाग लेंगे। डॉक्टर कोहेन उम्मीद करते हैं कि इस नई दवाई से लोगों के स्वास्थ्य में सुधार होगा।
I would expect that because I guess compliance with medication or taking medication regularly in remote communities has a number of difficult issues associated with it. I think that the ability to go once a week to clinical services and have medication that has a long duration of action really has the potential to improve outcomes.
Dr. Cohen के अनुसार इंडिजीनियस समुदाय में डायबिटीज की समस्या ऑस्ट्रेलिया के लिए गंभीर मुद्दा है। वे बताते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के सुदूर इलाकों में रहने वाले लोगों को उपलब्ध चिकित्सा सुविधाएं ऐसी गंभीर या जानलेवा बीमारियों पर काबू पाने में बेअसर हैं।
I would certainly urge government to have a look at the funding of clinical services in remote communities. It is urgent that there are more people on the ground who are able to provide the sort of chronic disease management that is absolutely essential. There is just a real lack of clinical capability on the ground in these remote services. And that's one of the things that we struggle with when we go remotely. You know, that most of the time they're dealing with acute medicine and sick people and accidents, etc. Managing a difficult chronic disease in patients who have generally low health literacy, and remembering, of course, diabetes is largely an asymptomatic condition, so patients don't manage things in an organised way. All of these are enormous challenges.
इसके साथ ही oral type 2 diabetes से संबंधित कई और दवाएं भी PBS में शामिल की जा रही हैं. सरकार का कहना है कि इन दवाओं को PBS परियोजना में शामिल करने से बजट पर बड़ा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये मौजूदा दवाइयों का विकल्प मात्र हैं। इसके अलावा महिलाओं में एडवांस सर्वाइकल कैंसर और एक्रोमेगुले से पीड़ित लोगों के लिए दवाओं में $70 मिलियन का निवेश भी होगा। विपक्ष ने इस दवाई का PBS में शामिल किए जाने का स्वागत किया है, परंतु विपक्ष में स्वास्थ्य मामलों की प्रवक्ता कैथरीन किंग के अनुसार सरकार PBS में बदलाव पर पारदर्शिता नहीं बरत रही। कैथरीन किंग ने कहा कि सरकार अभी भी कोएलिशन के 2014 बजट में प्रस्तावित PBS के भुगतान में वृद्धि के पक्ष में है।
She wants to make medicines unaffordable for a whole range of other patients. What this government is intending to do is increase the costs of the pharmaceutical benefits, your every script, by $5 for general patients and 80 cents for concessional patients.